ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಮನುಮಪಿ ಸಚಿಪುತ್ರಮತ್ರ ಸ್ವರೂಪಂ ಕ್ಷಿಪ್ತಾಸ್ಯ ಕಾಮಾದಿತರಂಗಮಧ್ಯೈ ಕೃಪಾಮಯಿ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಬೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಬೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಯಂ ಪ್ರವ್ಯಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹಕಾತರಯ ಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ಸರ್ವೋಭಿನೇದೋ ತಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನುತೋಷಿ. ದಿವ್ಯದಬಿಂದಾರಣ್ಯಕಲ್ಪದ್ರುಮಾದ ಶ್ರೀಮದರತ್ನಾಗಾರ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥೌ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಶಿಲಗೋವಿಂದದೇವೌ ಪ್ರಿಷ್ಠಾಲಿಭಿ ಶಬ್ಯಮಾನೋ. ಭಕ್ತಿ ಕಾ ತಾರತಮ್ಯ ಮೇ ದಿಖಲಾತೆ ಹುವೆ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ ರಹಾ ಥಾ. ಭಕ್ತಿ ಕಹನೆ ಸೆ ನಿರ್ಮಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಬೋಧ ಹೋತಾ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ನೆ ಬತಲಾಯಾ ಥಾ. ಸಾಧಾರಣ ತರ ಸೆ ಪಾಂಚ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಹಮ್ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನೆ ಜಾ ರಹೆ ಹೈ, ಜಿಸ್ಮೆ ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಪ್ರೇಮಿ ಭಕ್ತ, ಪ್ರೇಮ ಪರ ಭಕ್ತ ಔರ್ ಪ್ರೇಮಾತುರ ಭಕ್ತ, ಯಹ ತಕ್ ಪಾಂಚ ಹೈ. ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತ ಕೋ ತುಮ ಲೋಗ ಐಸಾ ಮತ್ ಸಮಝ ಲೇನಾ ಕಿ ಜೋ ಲೋಗ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಮೈ ವೇದಾಂತ ಜಾನತಾ ಹೂಂ, ಭಗವಾನ್ ನಿರಾಕಾರ ಹೈ, ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಹೈ, ಅರೂಪ ಹೈ. ಜೊ ಲೋಗ ಐಸಾ ಮಾನತೆ ಹೈ, ಸಂಸಾರ ಕೋ ಝೂಠಾ ಮಾನತೆ ಹೈ, ಇನ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತ ನಹೀಂ ಕಹಾ ಗಯಾ, ಯೇ ಪಹಲೇ ಸಮಝೋ. ಯೇ ಲೋಗ ಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಅಪರಾಧಿ ಹೈ. ಯದಿ ಕೋಯಿ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ನಿರಾಕಾರ ಮಾನತಾ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ರೂಪ ನಹೀಂ ಮಾನತಾ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ಗುಣ ನಹೀಂ ಮಾನತಾ ಹೈ, ಉನ್ಕಿ ದಯಾ ಕೋ ಕೃಪಾ ಕೋ ಭೀ ನಹೀಂ ಮಾನತಾ, ಜಗತ್ ಕೋ ಝೂಠಾ ಮಾನತಾ ಹೈ, ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೀ ರಾಮ ಕೀ ಸಬ್ಕಿ ಲೀಲಾವೋ ಕೋ ವೋ ಝೂಠ ಮಾನತಾ ಹೈ, ತೋ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಕಹಾಂ ಸೆ ಆಯಾ, ವೋ ಸೇವಾ ಕಹಾಂ ಉಸ್ಕಿ ಹೈ. ಇಸಲಿಯೇ ಯೇ ಲೋಗ ಭಕ್ತ ಕಿ ಕಿಸೀ ಭೀ ಶ್ರೇಣಿ ಮೇ ನಹೀಂ ಆಯೇಂಗೆ, ಬಲ್ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಹೈ. ಐಸೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ದೂರ ಸೆ ದಂಡವತ್ ಕರ್ನಾ, ನಿಕಟ ಮೇ ನಹೀಂ. ಜೊ ಲೋಗ ಯೇ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ, ಆಪ್ ನಾರಾಯಣ ಹೈ, ಆಪ್ಕೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೈ, ಐಸೆ ಲೋಗೋ ಸೆ ಬಹುತ್ ದೂರ ರಹಿಯೇ. ಸಭಿ ನಾರಾಯಣ ನಹೀಂ ಹೈ, ಸಭಿ ಗೋವಿಂದ ನಹೀಂ ಹೈ, ಇಸ್ ಚೀಜ್ ಕೋ ಸಮಝೋ. ಗೋವಿಂದ ಹಮಾರೇ ಅಂದರ್ ಮೇ ಹೈ, ಕಿಂತು ಹಮ್ ಗೋವಿಂದ ನಹೀಂ ಹೋ ಸಕತೆ ಹೈ. ಸಿಯಾರಾಮ ಮೈ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಿ ಕರೋ ಪ್ರಣಾಮ ಜೋರ್ ಜುಗ ಪಾನಿ, ಸಿಯಾರಾಮ ಮೈ ಸಮಝೋ ಸಗತ್ ಸಬ್ ಜಗತ್ ಕೋ, ಸಿಯಾ ಔರ್ ರಾಮ ಮತ್ ಸಮಝೋ ಕಿಸಿ ಕೋ, ಸಿಯಾ ಔರ್ ರಾಮ ಹೀ ಹೈ, ದೂಸರಾ ಕೋಯಿ ನಹೀಂ ಸಿಯಾರಾಮ ಹೋ ಸಕತಾ. ಜಬ್ ಭರತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಹೀಂ ಹೋ ಸಕೆ ಸಿಯಾ ಔರ್ ರಾಮ, ಹನುಮಾನ್ ಜೀವ ಸಬ್ ಸಮಯ ಸಾರಾ ಜೀವನ ಉನ್ಕಿ ಸೇವಾ ಕೀ, ತೋ ಔರ್ ದೂಸರಾ ಕೈಸೆ ಸಿಯಾ ಔರ್ ರಾಮ ಹೋ ಸಕತಾ ಹೈ, ಜೋ ಐಸಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ತುಮ್ ಸಿಯಾ ಔರ್ ರಾಮ ಹೋ. ವೆ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ, ರಾಮ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ, ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಅಪರಾಧಿ ಹೈ, ಈ ಚೀಜ್ ಕೋ ಸಮಝನೆ ಕಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಚೇಷ್ಟಾ ಕೀಜಿಯೇ. ಬಾಢ್ ಆ ಗಈ, ಸಬ್ ಕುಛ ಜಲಮಗ್ನ ಹೋ ಗಯಾ, ಪೇಡ್ ಪೌಧೆ ಡೂಬ ಗಯೆ, ಘರ್ ಡೂಬ ಗಯಾ, ಚಾರೋ ತರಫ ಪಾನಿ ಪಾನಿ ದೇಖತಾ ಹೈ, ಇಸ್ಕೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಜಲಮಯ. ಕ್ಯಾ ಪೇಡ್ ಉಸ್ಮೇ ಜೋ ಡೂಬ ಗಯೆ, ಕ್ಯಾ ವೋ ಪಾನಿ ಬನ್ ಗಯೆ? ಉಸ್ಮೇ ಘರ್ ಮಹಲ್ ಔರ್ ಜೋ ಸಬ್ ಥೆ ಆದಮಿ ಥೆ ಉಸ್ಮೇ ಡೂಬ ಗಯೆ, ತೋ ಕ್ಯಾ ವೋ ಪಾನಿ ಬನ್ ಗಯೆ? ಕೋಯಿ ಭೀ ಪಾನಿ ನಹೀಂ ಬನೇಗಾ ಭಾಯಿ, ಸಮಝೋ. जो कुछ बना है उनसे शिया और राम से बना है, कृष्ण से बना है। इसलिए उच्च कोटि के भक्त लोग सर्वत्र ही शिया राम को देखते हैं, सर्वत्र। घड़े में पानी है किंतु घड़ा पानी नहीं है, इस चीज को समझो। तुम्हारे अंदर में भगवान राम है, कृष्ण है, किंतु तुम राम या कृष्ण नहीं हो। अच्छा, मान लिया कि तुम सियाराम का ऐसा ही अर्थ करते हो जो सिया और राम है, या कृष्ण में से तुम कृष्ण को देखते हो, तो सिया और राम तो दो हैं, तो तुम उसमें कौन सा उनमें देखते हो, सिया को देखते हो या राम को देखते हो? इसलिए यह सब बातें गलत है। कोई भी जगत का आज तक दूसरा कोई व्यक्ति न तो सियाही हो सकता है, न रामी हो सकता है, न कोई कृष्ण हो सकता है। इसलिए कृष्णमय दर्शन का ये अर्थ है जो कुछ हम देखते हैं कृष्ण से ही हुआ है। इसलिए कृष्ण की स्मृति आती है, भावना के तरंग में वो उठ उठता है। सर्वत्र राधा कृष्ण अपने इष्ट देव को देखता है, इसके अंदर में इष्ट देव को देखता है, किंतु हम अपने को सीता और राम नहीं देखता या दूसरों को। इस चीज को अच्छी तरह से समझो। आज तक कोई सिया राम हुआ? हनुमान भी नहीं हुए, लक्ष्मण भी नहीं, तो और कौन हो सकता? शंकर जी क्या सीता जी हो गए या राम हो गए या कृष्ण बन गए? गोपीश्वर तो बन गए, गोपीश्वर बन गए हैं, ये बात तो ठीक है। गोपीश्वर माने गोपी का रूप धारण कर लिया, किंतु कृष्ण बन गए? आज तक कोई नहीं बन सकता, यही भ्रम धारणा है, यही अद्वैतवादियों की कष्ट कल्पना है। इससे बचे रहो, सिया राम के भक्त बनो, राम के भक्त बनो। मैं रघुपति, रघुपति पति मोरे, यही भाव जन जाए जन भोरे। मैं सिया राम का दास हूं, जन्म जन्मांतर में यह भाव हमारा भूल न जाए। जब मैं सीता हो गया, राम हो गया, हनुमान जी अपनी पूछ के वो लपेट करके ऐसे मारेंगे जो वो रसातल में जाएगा ऐसे लोगों को। इसलिए सिया राम बनने की चेष्टा मत। ऐसा जो कहते हैं कि नमो नारायण कहो, ओ भक्तो अस्मि, मैं भक्त हूं, सेवको अस्मि, दासो अस्मि, दासो अस्मि, नारायण का दास हूं, नारायण नहीं हूं। लोग कहते हैं, उनको कहने दीजिए, अपने अपराध से मरे। इसलिए अब आगे हम चलते हैं भक्ति का विवेचन करते हुए, जिसमें पहले बतलाया प्रहलाद महाराज इत्यादि, भीष्म पितामह इत्यादि ज्ञानी भक्त हैं। ज्ञानी भक्त माने सर्वत्र अपने प्रभु को देखते हैं, इसलिए ये भगवान की कोई सेवा नहीं कर पाते हैं, उनका ध्यान चिंतन स्मरण कीर्तन ये करते हैं। इसके बाद में शुद्ध भक्त हमने अम्बरीश महाराज जी को बतलाया, जिसका भागवत में वर्णन। अब इसके बाद प्रेमी भक्त हनुमान जी का नंबर आता है। उन्होंने शादी की, शादी तो की नहीं, बाल बच्चे हैं, इसलिए उनका अखंड प्रेम राम के चरणों में है। वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, चलते फिरते उठते बैठते सोते छींकते फिसलते सब समय राम ही राम, राम ही राम, राम राम करते हैं। इनका हृदय राममय, राम से भरा हुआ है। राम की सेवा छोड़ करके कुछ नहीं ये जानते। एक समय सीता जी ने कहा, प्रस्ताव रखा, उस सभा में भरत जी थे, लक्ष्मण जी थे, शत्रुघ्न जी थे, सीता जी थी। सीता जी ने एक प्रस्ताव रखा, ये बंदर कहां से आ गया जो हमारी सारी सेवाओं को छीन लिया हमसे और हमें किसी सेवा में नहीं रहने देता। दिन में, रात में, सवेरे शाम को ऊपर नीचे भीतर बाहर, बस यही बंदर ही बंदर ये सेवा करता है, और हम लोगों को कोई सेवा छोड़ता नहीं जो हम सेवा करें। एक बात किया जाए, अब हम चारों आदमी हैं, चारों मिल करके सेवा ऐसा दिन रात का बांट ले जो इस बंदर के पक्ष में एक मिनट की भी सेवा न आए, कैसे हो? सीता जी ने कहा रात की सेवा हमको दी जाए, उसमें कोई नहीं आए, हनुमान को घुसने नहीं दूंगी, और बाहर में जाने पर लक्ष्मण जी उनके साथ रहें, और कोई जरूरत तो भरत और शत्रुघ्न रहें, किंतु ये बंदर नहीं आए, लंगूर नहीं आए। ऐसा ही किया, सारी सेवा उन्होंने बांट ली, सवेरे से शाम और शाम से सवेरे तक की, रात तक की सब। हनुमान जी बड़े दुखी हुए, मैं तो सेवा के बिना एक सेकंड नहीं जी सकता। गए इन लोगों से, कहा आपके चरणों में हमारा विशेष निवेदन है, आप लोग मुझे कोई भी एक छोटी से छोटी सेवा दे दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, और इसका पाप आप लोगों के मत्थे पड़ेगा। वो लोग अभी कोई सेवा नहीं बची है, हम अपनी सेवा में कटौती नहीं करेंगे, हम लोग ऐसी सेवा करेंगे, तुम बैठ करके राम राम करो, और कोई सेवा नहीं है। ये गए, फिर बोले अच्छा एक बात करो, कोई सेवा तो दिया नहीं, हमको एक छोटी सी सेवा मैं मांगता हूं वो दो। रामचंद्र जी को कभी कभी जम्भाई आ सकती है, उसमें चुटकी बजाने का काम मेरा रहेगा, ये मैं चुटकी, इसलिए जब जम्भाई हम लेते हैं ना तो असावधान हो जाते हैं, इसलिए उस समय में भगवान का नाम हरी 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 चुटकी बजा करके करना चाहिए, या राम राम या साहब, तो ये चुटकी बजाने का काम मेरा रहेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि राम को कभी आज तक जम्भाई हमने देखी नहीं, जो राम को कभी जम्भाई आती है तो ठीक है, ये सेवा तुमको दे दिया। हनुमान जी ने बहुत आप लोगों की विशेष कृपा है, घर में नहीं जाना होगा तो ठीक है, मैं चौके पर बैठा रहूंगा, घर के बाहर चौकट पर बैठा रहूंगा, और उन्होंने बैठ करके चुटकी बजाना आरंभ किया, और राम को जम्भाई पर जम्भाई आने लगी, दिन रात विश्राम नहीं, सारी रात सारा दिन वो चुटकी बजाते रहे, राम जम्भाई करते रहे, अब इनकी सेवा जितनी थी सब ठप हो गई, कोई सेवा ही नहीं कर सके, जम्भाई आ रही है, अब देख करके बड़ी भारी चिंता इन लोगों को हुई, अब मुझे क्या करना चाहिए, हम लोगों को ये तो हनुमान दे दो, सब समय चुटकी बजाता है, उनको जम्भाई आती है। उन्होंने कहा कि चुटकी क्यों क्यों बजाता है, क्यों है? वो तो अभी जम्भाई लेंगे तब तो बजाना, तो भाई हमको तो घर के अंदर में जाने नहीं दे रहे, तो मैं बाहर से मैं कैसे देखूंगा कि वो कब जम्भाई लेते हैं नहीं है, इसलिए कब आ जाए, इसलिए पहले से चुटकी बजा। अंत में बाध्य हो करके हनुमान की पहले जी वो सेवा की स्थिति थी, उनको बजाए करने पड़ी, नहीं तो रामचंद्र जी को बड़ा कष्ट, और हनुमान जी के बिना राम भी नहीं रह सकते, जैसे राम के बिना हनुमान नहीं रह सकते, हनुमान के बिना भी राम नहीं सकते। आप लोग देखे होंगे देशों में विदेशों में सर्वत्र सीता जी की अलग मूर्ति नहीं, लक्ष्मण जी की, भरत की, शत्रुघ्न की कहीं अलग मूर्ति, विशेष विशेष जगहों में, जैसे मथुरा में शत्रुघ्न गोपाल है, ऐसी विशेष नहीं तो नहीं होती, और हनुमान जी की गली गली में, अली गली में, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई गली नहीं, यहाँ तक कि जयपुर के मार्ग में यहाँ कहाँ जहाँ तहाँ सड़क को रोक करके भी उनको हनुमान जी की पूजा करते हैं, इसीलिए करते हैं कि ये प्रेमी भक्त हैं, बिना भगवान की सेवा से एक सेकंड नहीं रह सकते हैं। बहुत सी हमने बतलाई है उनके संबंध में, एक समय लंका विजय के बाद में रामचंद्र जी आए, अभिषेक हुआ, राजगद्दी पर बैठे और बंदर और कपि भालू इत्यादि जो आए थे देश विदेश से, उनको विदा करना है। कोई जाना नहीं चाहता है राम के स्नेह से, और इनको ये भेजना चाहते हैं जाओ अपने परिवार के पास में, बहुत दिन हो गया हमारे पास में। सबको भेज रहे हैं और किसी को कुछ दे रहे हैं उपहार, किसी को कुछ दे रहे हैं, सबको उपहार दे दे करके और जबरदस्ती उनको भेज रहे हैं। हनुमान सबको भेजने के पश्चात हनुमान जी रह गए। इनको भेजेंगे तो इनका परिवार कहाँ है? जो परिवार तो वो राम ही उनके परिवार है, इसलिए भेजने का प्रश्न नहीं। किंतु इन्होंने रावण के साथ में युद्ध में बहुत ही काम किया है। सीता जी की खोज इन्होंने की, उसके पुत्रों को, रावण के पुत्रों को इन्होंने मारा, खोज लगा करके आए और फिर युद्ध किया। इसलिए इनके ऋणी हैं सभी, राम ऋणी अपने को मानते हैं। जब इनकी इनको बुलाया गया तो हनुमान जी आए, तो हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी ने देखा इसको मैं क्या दूं, मेरे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही अपने को इसका अपना हृदय दे रखा है, अब और मैं क्या दूं। तो सीता जी के तरफ में उन्होंने देखा, सीता जी ने क्या किया, विवाह का समय का नौलखा हार जो था सिरा जवाहरातों से परिपूर्ण अमूल्य, उस रत्न को निकाल करके और हनुमान के गले में सीता जी ने डाल दिया। डालने के बाद में हनुमान जी प्रसन्न तो हुए, किंतु इसकी एक एक मनिया को काट करके जैसे बंदरों का स्वभाव होता है वो देखने लगे। एक एक करके सब कड़ियों को, मणियों को उन्होंने तोड़ डाला और फेंक दिया। रामचंद्र जी हंसने लगे और सब लोग हंसने लगे। रामचंद्र जी बोले, अरे तू कैसा है भाई, सीता जी ने इतना प्रिय हार जो उनका प्राणों से भी प्रिय था तुमको दिया, तुम पत्थर की भांति तोड़ करके फेंक रहे हो क्यों? सब लोगों को कौतूहल था। उन्होंने कहा, मैं देख रहा था इसमें राम नाम है कि नहीं, किंतु इनमें देखा जे राम नाम नहीं है तो ये मेरे किसी काम का नहीं। अब तो तुम्हारे हृदय में है यहाँ पर बरसाती साथ में फाड़ डाला अपना ही, और देखा उनके रग रग में एक एक परमाणु में हृदय में सर्वत्र राम 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 राम, साक्षात राम ही उनके हृदय में है, राम नाम नहीं, एकदम साक्षात राम को देखा। ऐसे ये सेवक हैं। मैं समझता हूं कि रामायण में जहां देखे हनुमान जी का जरूर कुछ न कुछ प्रसंग होगा, पुराणों में देखेंगे उनका जरूर प्रसंग होगा भक्ति के संबंध में उनकी सेवाओं का। तुलसीदास जी के तो वो गुरु हैं, तुलसीदास के गुरु हैं वही। इस तरह से रामायण पुराण में महाभारत में सर्वत्र हनुमान जी का जश सब है, किंतु उनके अंदर में एक ग्लानी है। क्या ग्लानी? वो तो सब एक बार मैंने कहा था, शायद सिंदूर वाली बात कही थी मैंने यहाँ, तो सबको यदि याद नहीं है तो जरा याद स्मरण करा दूं। सीता मैया स्नान के बाद में श्रृंगार कर रही थी श्रृंगार सदन में, सब श्रृंगार हो जाने के बाद में उन्होंने मांग में सिंदूर भरना आरंभ किया, और उसी बीच में न जाने कहां से हनुमान आ गया। मैया मैया तू कहां है? खोजते खोजते श्रृंगार भवन में घुस गए। अरे मैया तू क्या कर रही है? तो मैं सुहाग लगा रही हूं। सुहाग मैंने क्या? हमारे पति तुम्हारे जो प्रभु हैं उनका कभी कोई अनिष्ट न है, वे मरे नहीं कभी अजर, और हमारा सुहाग युग युगांतर के लिए सदैव के लिए। इसलिए सबकी होती प्रणाम करके निकल गए, और सीताजी स्नान करके जबकि श्रृंगार करके जब घर से निकल गई स्नान गृह से, तो हनुमान जी उसमें प्रवेश किए और सारे जितने सेंदूर थे वो सबको तेल में मिला लिया, और मिला करके अपने सारे में पोत लिया पूरा, और पोत करके राज्यसभा में श्री राम सीता इत्यादि लक्ष्मण की राज्यसभा में पहुंचे, और सभी लोग दे करके हंस रहे थे आज हनुमान ने ये क्या किया। लोगों ने पूछा जे भाई ये क्या किया तुमने, आज तो अद्भुत तुमने रूप बनाया। तो वो कहे ये बोले कि हमारी मैया यदि राम के सुख होने के लिए अपने मांग में सिंदूर लगाती है, तो मैं क्यों नहीं सारे अंगों में लगा लूं जो हमारे राम सब समय सुखी है। ये है सेवा, ये हनुमान उनके उनके प्राण में बाहर भीतर सर्वत्र ही राम राम रम रहे हैं और सेवा करते हैं, किंतु हृदय में कुछ कसक कसक है, कसक है। वो क्या कसक है, वो यह है कि इनकी सेवा में संकोच होता है, संकोच होता है। क्या संकोच, सब प्रकार की सेवाएं नहीं कर सकते, बाध्य हैं वो नहीं करने के लिए। सीता जी जो सेवा कर सकती हैं वो नहीं कर सकते, असंभव है। लक्ष्मण जी भी जो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और फिर तो क्या, सेवा दो प्रकार की होती है, ऐश्वर्यमयी सेवा और माधुर्यमयी सेवा। जहां पर नरलीलावत अपना बंधु परम बांधव समझकर निसंकोच भाव से जो सेवा होती है उसको मधुर सेवा कहते हैं, और जिस सेवा में संकोच होता है उसको ऐश्वर्यमयी सेवा कहते हैं। हनुमान किसी भी स्थिति में राम के पलंग पर चढ़ करके उनके पैरों को दबा सकते हैं या नहीं, असंभव, नहीं कर सकते। भले ही रामचंद्र जी उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के अपने गले से लगाएंगे, किंतु छिटक करके उनके चरणों में ही पड़ेंगे। जैसे पांडव लोग एक पलंग पर खाते हैं, सखा लोग पहले फल चख करके मीठा और कृष्ण को खिला देते हैं, ऐसा करने का अधिकार है इनको, नहीं है, नहीं कर सकते, सेवा में संकोच है। नरलीला के अनुरूप लौकिक सद्बंधु जैसे मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, एक पलंग पर सो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, परस्पर आलिंगन बद्ध हो सकते हैं, एक थाल में बैठ करके खा सकते हैं। हनुमान जी एक थाल में बैठेंगे, पहले भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान जब प्रसाद पा लेंगे तब फिर उनका बचा खुचा भक्तों में बांट करके सब अपने खाएंगे। इसलिए उनको संकोच है इस सेवा में। उनको कभी कभी ज्ञान होता है ये भी, हमारे जो प्रभु हैं ये भगवान हैं, जिस धनुष को सारे विश्व के बड़े बड़े रावण तक उठा नहीं सके, एक साथ में हजारों वीर लग करके तस से मस नहीं कर सके, और उसको सीता जी ने बाएं हाथ से उठा करके लिपोट करके रख दिया, रखा ना। और रामचंद्र जी ने खेल में ही, जैसे गन्ना हो गन्ना से भी कम, और हाथों अपने सूंड से उठा करके उसको तोड़ मोड़ करके खा जाता है, ऐसे उस धनुष को पलक झपटते ही उठाया, कब उठाया कब तोड़ा, तीन तीन खंड कब हुए उसको पता नहीं। देखो
रावण को मारना सहज था?
कोई नहीं मार सकता।
इसका कारण एक था, उसने सीता जी को अपने हृदय में बसा लिया था, हृदय में रखा था, अमृत था उसके हृदय में, यही सीता जी, इसलिए मारेंगे तो क्या होगा, सीता जी को चोट पहुंचेगी, इसलिए वो क्या करते थे, रामचंद्र जी बाण मारकर तो उसको व्याकुल कर दिया, सीता जी को भूल गया, तब फिर मारा। इस तरह से हमारे हनुमान जी सब प्रकार से सेवा करते हैं, किंतु हृदय में एक कसक यही रही कि मैं संपूर्ण सेवाओं में हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए इनको प्रेमी पावभक्त कहते हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ हैं कौन, पांडव लोग, द्रौपदी। किस लिए श्रेष्ठ? श्रेष्ठ इसलिए रसगत विचार से, सेवा के वैशिष्ट से। किस लिए सेवा के वैशिष्ट से? जैसे रामचंद्र जी हैं, ये राम हैं कौन, स्वयं कृष्ण। सीता जी कौन है, स्वयं राधिका जी हैं। अंतर तत्वता कोई नहीं है। मर्यादा की शिक्षा देने के लिए सीता रामचंद्र जी त्रेता युग में राम हुए हैं और सीता जी हैं, मर्यादा की शिक्षा देंगे। दोनों अपनी कलाओं से पूर्ण हैं। रामचंद्र जी हैं सूर्य वंश में, सूर्य की कितनी कलाएं होती हैं, 12, इसलिए 12 कलाओं में रामचंद्र परिपूर्ण हैं। और कृष्णचंद्र आते हैं किस कुल में, चंद्र वंश में, उसमें कितनी कलाएं हैं, 16 कलाएं, इसलिए 16 कलाओं में, इसलिए कम मत समझो, तत्वतः दोनों एक ही हैं, किंतु रसगत कुछ विचार है। जब उन्हें कृष्ण जब स्वयं भगवान के रूप में आते हैं, लौकिक सद्बंधु की भांति आते हैं, तो वो बड़े विचित्र होते हैं, तब वही कृष्ण कहलाते हैं। और जब राम के रूप में कृष्ण आते हैं मर्यादा की रक्षा करने के लिए, तो कृष्ण को ही राम कहा जाता है। उसी तरह से यहां भी समझो, पांडवों की कुछ रसगत वैचित्र श्रेष्ठता है। आप लोग जानते हैं कृष्ण ने अर्जुन का सारथ्य किया था, साथी बनकर के घोड़ों को चलाया, घोड़ों की सेवा करते थे, पांडवों की छोड़ दो, घोड़ों के पैर दबाते थे, उनको पानी पिलाते थे, किसको, अर्जुन के जो रथ के घोड़े हैं, और अपने प्रिय सेवक जो बजरंग जी हैं, हनुमान जी हैं, उनसे मित्रता करा करके कहा कि जरा इनके रथ पर रख करके इनकी सब समय रक्षा करना हनुमान जी को, इससे जब ऐसा कोई बाण आया जो उनको निगल जाएगा, हनुमान जी पृथ्वी में रथ को धसा देते और नीचे चला जाता और बाण ऊपर ऊपर ही चला जाता। कर्ण ने ऐसा छोड़ा था, बहुत ही लंबी ये सब विस्तृत बातें हैं शास्त्रों की, इसलिए मैं संक्षेप में आप लोगों को बतला रहा हूं। रथ का सारथ्य किया, इतने से कृष्ण का पेट नहीं भरा, सुभद्रा जी के साथ में अपनी बहन, छोटी बहन, बड़ी प्रिय प्रिय बहन की शादी किससे की, अर्जुन से कर दी, और उनके साले बन गए। साला जानते हैं कितना प्रिय है उनको, उनके साले स्वयं कृष्ण, अर्जुन को अर्जुन साला नहीं, कृष्ण स्वयं साले बन गए। और ये भी बड़ी विचित्र कथा, द्वारका की बात है, कथा तो बढ़ जाएगी, हमारे ब्रज की कथा में आने में विलंब हो जाएगा, तो भी मैं सुनाऊं क्योंकि आप लोगों ने सुना नहीं होगा ये सब कथाएं। शायद एक समय अर्जुन द्वारका में पधारे, बड़े सुंदर थे, अद्भुत कृष्ण की जोड़ी के थे, श्यामले, श्यामला ही उनका रंग था। कृष्ण से उनकी जोड़ी बड़ी बैठती थी। उनको देख करके सुभद्रा जी का चित्त कुछ उनके तरफ में आ गया। कृष्ण ने समझ लिया जी मेरी बहन अर्जुन से शादी करना चाहती है, किंतु बलदेव जी चाहते थे जे हमारी बहन का, प्रिय बहन की शादी हमारे शिष्य दुर्योधन से हो, क्योंकि उसको गदा युद्ध सिखलाया है। न जाने क्यों स्नेह कहाँ कब पड़ जाता है, इसका कोई ठीक नहीं। हो सकता है कि कोई लड़की सुंदरी नहीं हो, तभी किसी की नजर उस पर पड़ जाती है, बस वो उसको वही अच्छी लगती है। किसी को एक सुंदर आदमी नहीं है किंतु लड़की की नजर पड़ गई, भले ही सुंदर नहीं हो कोई बात नहीं, किंतु नजर उसकी उस पर चली गई, अब वो उसके गुणों को सौंदर्य को नहीं देख करके बस उसके ऊपर नहीं।